संग संग रहते हैं वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते, शिक्षा देते रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं, प्यारी मुरली प्रतिदिन हम प्रतिदिन हमको आती, प्रभु प्रेम की पाती है, भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में भगवान हमारा साथी है,
भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी।
ओम शांति। गुड इवनिंग। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप प्यारे बाबा की शिक्षाओं को लंबे समय से अध्ययन, मनन, चिंतन कर रहे हैं। रेगुलर 40 वर्षों से आप बाबा की मुरलियों पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। आप बाबा की बेहद मधुबन घर में विगत 31 वर्षों से 31 ईयर से अपनी ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल की सेवाएं दे रहे हैं। आप निरंतर अथक सेवाधारी बनकर पूरे ब्राह्मण परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उनको भी चिकित्सा देते हैं। आपका एक प्रोजेक्ट है कैड प्रोजेक्ट, जिसको 3D हेल्थ प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसके आप डायरेक्टर हैं। उसको आपने ज्ञान और योग के गहन अध्ययन रिसर्च करके उसकी थीसिस को विश्व में नंबर 1 स्थान प्रदान किया है। आज उस कैड प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 10,000 रोगी ज्ञान और योग, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने आप को क्योर फील कर रहे हैं और उनके कोई भी प्रकार के रोग, हेल्थ से, हार्ट से संबंधित कोई भी उन पर दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। ऐसा आपने राजयोग का और बाबा की मुरली का सघन अध्ययन मनन किया है। मैं भ्राता जी दिलाराम बाप के सच्ची दिल वाले बच्चे हैं। राजयोग द्वारा लाइफ स्टाइल चेंज करने पर आपकी मास्टरी है, तो हम आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि एक बाप से सर्व संबंधों की, अनुभव की ऑथोरिटी हम कैसे बने, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। चलिए, इस विषय पर रूढ़िहान करने से पहले हम चलते हैं एक बार फिर उस पावर हाउस के पास। देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूँ। ओम शांति। जैसे लौकिक में हमें अपने संबंधों की अनुभूति होती है ना, अपने माता की, पिता की या और भी संबंध हैं, क्या एक बाप से हम ऐसे सरल संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं? जैसे एक बच्चे को कभी भी 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, कभी दुख में उसको किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? माँ की याद आती है ना, क्योंकि माँ के संबंध के अनुभव की अथॉरिटी है। माँ ने बचपन से उसकी केयर की है, आज भी वो स्मृतियाँ जागृत हैं। भले आज माँ ना भी हो, शरीर भी छोड़ दिया हो, तो भी क्या होता है? माँ याद आती है ना दुख में, बाप याद नहीं आता है, ज़्यादातर माँ ही याद आती है। अब प्रैक्टिकल में जो परमात्मा है, एक बाप है, उससे सरल संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने, इसकी गहराई में जाएंगे हम, समझेंगे। एक तो होता है दिमाग से समझना, नॉलेज के आधार पे समझना या संबंध बनाना, दूसरा दिल से। और फिर संबंधों को समाने के स्थान कहाँ है? जिससे प्यार होता है उसका कहाँ समाते हैं? दिमाग में, दिल में। दिल है समाने के स्थान। बाबा ने कहा था, बाप से मिलन मनाना हो तो दो स्थान है, कौन कौन से? बाबा ने कहा, एक तो रूहानी गार्डन है और एक सागर का किनारा। सागर का किनारा माना बीच, कहते हैं ना बीच। दो प्रेमी मिलते तो कहाँ मिलते हैं? आशिक माशुक या तो गार्डन में मिलते हैं या कहाँ मिलते हैं, बीच में मिलते हैं। तो हमारा कौन सा है, हमारा भी रूहानी गार्डन है और मधुबन सबसे अच्छा स्थान है, बाबा का बनाया हुआ गार्डन है ना, रूहानी अल्लाह का गार्डन, अल्लाह का बगीचा है, इसमें हम बाबा से मिलन मनाते हैं। और दूसरा है बीच, सागर, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। अब इसको हम गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि हमें कब बाबा के साथ का अनुभव होता है, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति कब होती, कैसे होती है। हम सभी समझते हैं ये बात को कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, यस, ये स्मृति सदा रहती है नहीं रहती। शिव बाबा ने हम आत्माओं को चुना है, ऊपर से देखा, जहाँ पर लुधियाना में रहते हैं हम सभी, लुधियाना आसपास रहते होंगे, ऊपर से देखा और आपको चुना है। कल्प पहले वाली आत्माएं हैं ना हम सभी, तो हम सभी आत्माओं को बाबा ने चुना और शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको सभी, नॉर्मली मैं समझता हूँ सभी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा हमारा, शिव बाबा ने माँ के रूप में ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। और जैसे लौकिक में होता है ना, जब बच्चा होता है माँ के पेट में, पाँचों महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो बच्चा लगभग 4 से 4.5 या 5 महीने माँ के पेट में रहता है। तो बच्चे की चेतना या कॉन्शियसनेस में क्या होता है, माँ समा जाती है और माँ के पेट में भी रहता है बच्चा, तो उसको क्या होता है, माँ के दिल में भी क्या होता है, चेतना में बच्चा समा जाता है। भले उसके पहले उसका कितना भी संबंध होता है, कि तो बच्चा होने के बाद क्या होता है, माँ के दिल में क्या रहता है, बच्चा ही रहता है। और बच्चे के दिल में, क्योंकि बच्चा माँ को शुरू से देखता है और माँ ही उसकी पालना करती, केयर करती, माँ के दिल, बच्चे के दिल में क्या होती है, माँ होती है। अगर बच्चा, माँ अगर किचन में है, खाना बना रही है, साथ में उसके पिताजी भी बैठे हैं, बच्चे के पिताजी या और भाई बहन भी बैठे हैं, खाना सर्व कर, खाना खिला रही है उनको, बच्चा बेडरूम में है, बीच में दीवार है, और बच्चे कुछ हो जाए तो क्या होता है, तकलीफ हो तो क्या होता है, रो भी रहा हो तो बाप को सुनाई नहीं देता है, किसको सुनाई देता है, कुछ तकलीफ ना भी रोए वैसे भी माँ को क्या होता है, तुरंत फीलिंग आती है और बच्चा माँ को बच्चे के पास पहुँच जाती है और देखती है बच्चा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तकलीफ में है, तो माँ को फील होता है ना। ऐसे ही, क्योंकि दिल वो स्थान है, दिल क्या है, चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस भी कहते हैं, जैसे शूटिंग बोर्ड होता है ना, उसमें एक बिंदु होता है, एक सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, तो दिल क्या है, ये तो शरीर का दिल है, इस दिल की बात नहीं कर रहे, आत्मा का दिल। तो जो आत्मा रूपी बिंदु है, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, उसे 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं निकल रही हैं हमेशा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज है ना आत्मा, जैसे बल्ब है ना, सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पे है, इसके बिल्कुल पास, जैसे दूर जाएंगे तो लाइट कम होती जाती है ना, ऐसे ही आत्मा की जो सीट है वो यहाँ से 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे आत्मा की सीट है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर है, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा वो है दिल। और दिल जो है दिव्य ब्राह्मण जन्म होते ही, जैसे लौकिक में बच्चे के दिल में माँ आ जाती है, ऐसे ही दिव्य ब्राह्मण जन्म होते ही हमारे दिल में कौन आ जाता है, शिव बाबा आ जाता है। मनुष्य के दिल में क्या होता है, क्या होता है, देवभान, दिल में, चेतना में देवभान, चेतना में ना, चेतना में हम अपने को क्या समझते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में क्या समाया हुआ है, तो देवभान, देवभिमान, रोल कॉन्शियस, मतलब हम क्या हैं, हम क्या पोस्ट है हमारी, कि हम बिजनेसमैन हैं, पति हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, माता माँ हैं, या कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन, व्हाटएवर, रोल कॉन्शियसनेस आ जाती है। और देवभिमान के संबंध संपर्क भी दिल में ही रहते हैं, और देवभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव ये भी दिल में ही रहते हैं। तो सारा जिस जो दिल में होता है उसकी याद स्वतः ही आती है, ठीक बात है, या करनी पड़ती, देखिए याद सदा सदा रहती है, कुछ भी थोड़ा सा कहीं हो जाए तो क्या होता है, उसी में टेंशन रहता है और अपने रोल कॉन्शियस समय सदा रहते हैं, संबंध संपर्क सदा दिल में रहते हैं, उनकी याद भी आती रहती है बीच बीच में और देखे पदार्थ भी याद आते रहते हैं और देव से पैदा होने वाले देवमान से पांच आसुरी स्वभाव काम क्रोध लोभ मनुष्यों के दिल में। क्योंकि हम हमारा ब्राह्मण जन्म दिव्य ब्राह्मण जन्म ये स्मृति में सदा इमर्ज रहे तो हमारे दिल में क्या महसूस होता रहेगा, बाबा महसूस। बाबा कौन है, ज्ञान का सागर। तो हमें ये स्मृति को बार बार इमर्ज करना पड़ता है, राइट। ये स्मृति मर्ज रहती है अधिकतर, और जब हम याद रहे कि मैं दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है, अब मैं मर्जीवा जन्म है मेरा, पहले जन्म से हम मर गए, अब पुराना देह देह अभिमान संबंध संपर्क अगर दिल में आया तो मैं ब्राह्मण हूँ क्या, तो सच्चा ब्राह्मण माना क्या जिसके दिल में कौन है, शिव बाबा है। सत्य की समझ का ज्ञान माना समझ, कौन सी समझ, सत्य की समझ का सागर बार बार अंदर महसूस करो कि ज्ञान का सागर समझ का सागर वो मेरे दिल में बैठा है, वो क्या मुझे क्या क्या मैसेज वहाँ से क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं, मुझे वाइब्रेशन दे रहा बच्चे तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, मैं हर समय हर स्थान पर हर कार्य में हर संबंध से तुम्हारे साथ हूँ, हर समय हर कार्य में और हर स्थान पर हर संबंध से तुम्हारे साथ सर्व संबंध से तुम्हारे साथ। हर समय का मतलब रात में दिन में कभी भी कहीं भी, स्थान माना कहीं भी, और कोई भी काम कर रहे हो आप, गाड़ी चला रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, हमेशा बाबा आपके साथ है। जैसा स्थान जैसा समय और जैसा कार्य उस संबंध से बाबा आपके साथ है, और उसके अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है कि आप पहले दिल में उसे महसूस करो, दिल में बाबा को रिवाइज करो, रियलाइज करो। सत्य की समझ का सागर, सागर है वो सत्य की समझ का, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। शांति किसे कहते हैं, बाबा पवित्रता का सागर कैसे है बताओ, एनीवन बोले, बाबा सदा हमारे सत्य स्वरूप को देखता है, भले हम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी हो, बीके नॉन बीके हो, आतंकवादी भी हो, तो क्या देखता है, किस रूप में देखता है, उसका परमधाम वाला स्वरूप देखता है। डाकू चोर हो तो भी उसका परमधाम वाला स्वरूप देखता है, तो यही पवित्रता है। उसका अनादि स्वरूप देखना किसी का भी, हम आपस में रहते हैं, भले युगल रूप में रहते हैं, पति पत्नी बच्चा हमारे साथ है या कोई पड़ोसी है, ऑफिस में हमारा बॉस है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, सेंटर पे रहते हैं, टीचर हम हैं, इंचार्ज हैं, साथ में हमारी बहनें हैं, कोई भी जिज्ञासु है, उसको किस रूप में देखना है, उसके अनादि स्वरूप से, अनादि स्वरूप सत्य स्वरूप है ना, अनादि स्वरूप से देखना। और सत्युग में जब आती है वो आत्मा, वो भी उसका सत्य स्वरूप है, दो सत्य स्वरूप है, अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप। जैसे एक माँ होती है ना, उसका बच्चा होता है ना, भले वो छोटा पहले छोटा होता है, उस रूप में देखती है कि तो बच्चा 30 साल का हो जाए, 40, 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, तो भी माँ को कौन सा रूप याद आता है, भले दाढ़ी आ गई, काली दाढ़ी आ गई, सफ़ेद दाढ़ी आ गई, तो भी उसके चेहरे में से उसको क्या दिखाई देता है, वही छोटा बच्चा दिखाई देता है। तो 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा चलता था पहले, मुकुट लगा के मोरपंख लगा देती थी माँ, पैरों में घुंघरी डाल देती, बस चलता था, बहुत सुंदर लगता था, तो माँ को वही बच्चा याद आता है। ऐसे बाबा को भी हमारा कौन सा रूप याद आता है, वर्तमान स्वरूप याद नहीं आता है, भले अभी हम खराब हो गए, तमो प्रधान हो गए, विकारी बन गए थे, तो बाबा को हम तब भी हम में से क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, परम नाम वाला स्वरूप। जब बाबा के पास थे और सत्य में जब आए, एकदम सुंदर स्वरूप था, तो वो स्वरूप दिखाई देता है, राइट। यही पवित्रता है। बाबा को तो अपना स्वरूप याद है, परमात्मा है, पवित्रता एवर प्योर है, कि तो हमारा स्वरूप कौन सा दिखाई देता है, अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप। तो बाबा को हर बच्चे से दिखाई देता है, और जब भी आत्मा आती है धरती पर, सत्युग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में, कलयुग में, तो कौन से रूप में आती है? सत्व प्रधान स्वरूप में आती है ना। पहला पहला तो ऊपर से तो सत्व प्रधान उतरेगी, भले धीरे धीरे सत्व से एक ही जन्म में सत्व से रजो भी हो जाएगी, तमो भी हो जाएगी, और तमो प्रधान होके एक ही जन्म में चारों स्टेज से निकलना तो पड़ेगा, चाहे एक ही जन्म हो। तो फिर तो बाबा उसका कौन सा स्वरूप देखता है? अपना परमधाम वाला और आदि सत्व प्रधान स्वरूप देखता है। यही पवित्रता है। बाबा इसका सागर है, उसको अर्थ सहित महसूस करो। परमात्मा ज्ञान का सागर, ए बी सी डी का सागर है। सार रूप में ज्ञान को कहते हैं ए बी सी डी, आत्मा, बाबा, कनेक्शन माना संबंध, और डी फॉर ड्रामा, कर्म सिद्धांत, है ना। तो बाबा देखता है कोई कुछ भी कर रहा है, कैसा भी रूप में है, उसका कर्म का फल उसका है, किंतु बाबा क्या करता है, हर आत्मा को बराबर देखता है। फिर बाबा शांति का सागर है। शांति माना बाबा किसी का पास देखता है क्या, भविष्य देखता है क्या? नहीं, संकल्प नहीं चलते उसको। शांति माना संकल्प ना पास का ना भविष्य का, वर्तमान में अपने सत्य में टिका हुआ बाबा परमधाम में, और हम आत्मा को भी सत्य वर्तमान स्वरूप में देखता है, सत्य स्वरूप में देखता है, वो शांति है। बाबा उसका सागर है, उसको संकल्प चलता ही नहीं है। चलता है संकल्प, कोई गलत कर रहा हो, यज्ञ में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ किसी बहुत सिकिल दे मुरब्बी बच्चे की शरीर छूट जाए, बाबा को संकल्प चलेगा? चलता है, क्योंकि आत्मा तो मरी नहीं। आत्मा मरी क्या? अच्छा, एटम बम फट जाए तो आत्मा मर जाएगी क्या? मरेगी नहीं, मरेगी ना। तो शांति का सागर है, कोई विचार नहीं चलता है संकल्पों से परे। बाबा प्यार का सागर है, हर आत्मा जैसी भी है जो भी है बाबा सबकी बराबर पालना करता है। ग्लानी करने वाला हो, महिमा करने वाला हो, ब्रह्मा बाबा भी प्रैक्टिकल में ऐसे करते थे ना, तो प्यार का सागर है। किंतु उसको पता है जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, पर मुझे सबको एक्सेप्ट करना, सबकी पालना करना, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। बाबा अतीन्द्रिय सुख का सागर है। बाबा के पास इंद्रियां तो है नहीं, तो वो तो है ही अतीन्द्रिय सुख का सागर, राइट, हमेशा ही सागर है, राइट, और आनंद का सागर है, बियॉन्ड है। आनंद माना परे, सबसे परे, बियॉन्ड है ना। और बाबा सत्य को परखने की शक्ति का सागर है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति। बाबा के सामने हजारों असत्य हों किंतु बाबा सत्य को, सत्य क्या है, कोई आत्मा कैसे भी है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, बाबा सत्य को जानता है, तुरंत सत्य को परख लेता है। हमारे अंदर भी क्या असत्य भरा हुआ ना, द्वापर युग से असत्य सत्य भरा हुआ है, सारी मेमोरी सेल्स में क्या भरा हुआ है, असत्य ही भरा हुआ है, देहभिमान देहभान भरा हुआ है, बॉडी रोल कॉन्शियसनेस भरी हुई है, संबंध संपर्क वाले भरे हुए हैं। भले भी हमें ज्ञान आ गया है पर फिर भी क्या भरा हुआ है, पुराना भरा हुआ ना, यही तो माया है। माया क्या चीज़ है, अंदर जो रिकॉर्डिंग है ना पुरानी, वही तो माया है। वो जैसे सामने देख, जैसा सीन देखती है, जैसा फाइल खुल जाए तुरंत फाइल खुल जाती है। होता है ना, किसी को 20 साल 25 साल पर कोई ने आपको कुछ कहा हो तो क्या होता है, कुछ गलत व्यवहार किया हो तो क्या होता है, 25 साल तक उसकी याद नहीं आई थी, किंतु उसको देखते ही क्या होगा, वो फाइल जो पड़ी थी अपने आप खुल जाएगी, सारी बातें याद आ जाएंगी, नहीं, और आपका वृत्ति भी बदल जाएगी, भावना भी बदल जाएगी तुरंत, भले ज्ञान में हो आप फिर भी ये बदल जाएंगे। तो बाबा को क्या है, बाबा तो सत्य को परखने की शक्ति का सागर है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, सही निर्णय एक सेकंड में, एक सेकंड, बाबा तो यथार्थ निर्णय, किसी कहते दिव्य बुद्धिवान है, बुद्धियों बुद्धिवान की बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, सबको बुद्धि देने वाला है ना। फिर वो विस्तार को सार मिलने शक्ति का सागर है, कितना भी विस्तार हो बात का एक सेकंड में सार दे आता है ना। समेटिंग शक्ति का सागर है, बैठा है समेट के सब कुछ ऊपर बैठा होगा, वो अशरीर स्थिति का सागर है, निराकार स्थिति का सागर है, बीज रूप स्थिति का सागर है, वो सहन करने की शक्ति का सागर है, वो कितना सहन करता है, समाने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है, और सहयोग करने की शक्ति का सागर, कोई कुछ भी हो जाए तो भी सहयोग देता ही रहता है, कभी ब्लॉक करता है सहयोग, तुम्हें आज के बाद मेरा सहयोग नहीं मिलेगा, सदा सहयोग देता रहता है। ये दिल में रिवाइज और रियलाइज करना चाहिए बार बार, राइट, को दिल में बाबा को अभी जो पुरानी स्मृतियाँ ना वो क्या है, ये बार बार दिव्य ब्राह्मण जन्म को इमर्ज करो तभी बाबा के साथ का अनुभव होगा, बाबा के साथ का अनुभव नहीं होगा। जो दिल में है उसकी याद तभी तो आएगी ना। तो दिल में बार बार सत्य की समझ का सागर मेरे यहाँ बैठा हुआ है, उसे रिवाइज करो कि मेरे दिल में मुझे दिव्य ब्राह्मण जाना है। ब्राह्मण को यह याद आना चाहिए बार बार कि बाबा यहाँ है, पवित्रता का सागर। एक मुरली थी ना, कोई पूछे आपसे बाबा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मेरे दिल में। उसको वही मेरा दिल ही पसंद है। और मैं कहाँ रहता हूँ, बाबा के दिल में रहते हैं, राइट। तो ये बार बार अपने तरह से रिवाइज और रियलाइज करना चाहिए। अशरीर से हम कहते मेरी अशरीर स्थिति नहीं बनती, यहाँ कौन बैठा है, अशरीर बाप बैठा हुआ है, अशरीर स्थिति का सागर बैठा हुआ है। कहता मेरी निराकारी स्थिति नहीं बनती, कौन बैठा है अंदर, निराकारी स्थिति का सागर बैठा हुआ है। मेरी मास्टर बीज रूप स्थिति नहीं बनती, पर अंदर कौन बैठा हुआ है, बीज रूप बैठा हुआ है ना। तो अंदर से बार बार रिवाइज रियलाइज करेंगे क्या होगा, महसूस करेंगे बार बार, रियलाइज माना सच्चे दिल से महसूस करना, मेरे से सहन नहीं होता, अंदर कौन बैठा हुआ है, सहन करने की शक्ति का सागर बैठा हुआ है। मेरे से बात समाई नहीं जाती है, मैं सहन तो कर लेता हूँ पर समाई नहीं जाती, बार बार बात बार बार उबलती रहती, राइट। वो तो समा कर बैठा हुआ है, नहीं उसको विचार चलता है क्या, मैं इतना समाया है, इतना सहन किया है। हमको तो विचार चल जाता है, मैंने इतना सहन किया बचपन से लेकर, इतना सहन किया होता नहीं होता है, बहुत सहन किया। माताएं सहन तो कर लेती हैं किंतु समा नहीं पाती, अंदर अंदर उबलती रहती है, इसलिए पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कमर दर्द होती है, नहीं ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो जाती है। तो सहन करने से, खाली सहन करने से बीमारी होती है, सहनशीलता माना चारों शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। बाबा चारों शक्तियों का सागर है, समा भी लेता है, सामना भी कर लेता, सामना भी करता रहता है और उनकी मदद भी करता रहता है। सहयोग करना मतलब क्या है, जो आपको तंग कर रहे हैं तो भी बाबा क्या करता है, तो भी उनकी मदद करता है। मान लीजिए कोई आपको डंडे से मार रहा है, उसका डंडा गिर जाए फिर क्या करना चाहिए, हैं, डंडा उठा के वापस दोगे भैया और पूरा कर ले, अपने दिल के अरमान पूरे कर लो। तो बाबा तो ऐसा है ना, नहीं है कि बाबा कहता बस और नहीं, बस इसके बाद सहन नहीं होगा, फुल स्टॉप लगाओ, नहीं। देखो हमने मुझे जब हम मुरली पढ़ते ना, हम तो कितने सालों से मुरली सुन रहे हैं, 40 सालों से बाबा की मुरली सुन रहे हैं, 31 साल से तो यहाँ सुन रहे हैं। कितनी बार जब मुरली पढ़ते हैं पुरानी 1980 की, 85 की, 86 की और 9, अभी तो 2010 की चल रही है, 2009 की, 6 की, 5 की पढ़ते थे, हमें याद आता है हम यहीं बैठ के मुरली ओम शांति भवन में शुरू शुरू में तो हम हाथ उठाते थे, हमें याद आता है बाबा के सामने हाथ उठाया, फ़ोटो खींच, बाबा कहते फ़ोटो निकल रही है, नहीं कितनी बार हाथ उठाया होगा। वो काम जो हमको 2000 में कर लेना चाहते अभी तक किया ही नहीं है, अभी तक नहीं किया, फिर भी बाबा क्या करता है, प्यार से देखता है ना। नहीं तो इतनी बार हाथ उठाया हो, वायदा किया हो और फिर भी ना पूरा काम किया हो तो क्या होगा। आपके साथ कोई वायदा करे, हर साल करे, हर साल 10 बार करे, दिन में हर साल 10 बार तो बाबा आता ही थे ना, 10-11 बार, और 10 बार 11 बार हाथ उठाए, हम करेंगे करेंगे, हम ऐसे बन के दिखाएंगे ऐसे, बस कितना चाहिए, कितना टाइम चाहिए, 6 महीने चाहिए, अच्छा 6 महीने दिए, और 6 महीने के बाद फिर देखा तो फिर वैसे के वैसे, नहीं। तो कितना वो, कितना मतलब क्या है, कितना समा लेता है, और फिर भी हमारे सामने हम फिर भी क्या कर, हाथ उठा लेते हैं, गलती करके भी हाथ उठा लेते हैं, और फिर भी बाबा कैसे करता है ना, कितना सहयोग करता है हमको, सहयोग इतना सहयोग हम करते हैं क्या, करते हैं? कोई गलतियां करता रहे हमारे सामने और हम उसको फिर भी मीठी मीठी दृष्टि से देखते रहो, ऐसा होता है क्या? तो उस बाबा को अंदर रिवाइज महसूस करो कि बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ है और मैं उसका बच्चा हूँ, और वो सातों एनर्जी का बैलेंस का सागर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों एनर्जी का बैलेंस है उसके अंदर, हम देहधारियों में, बाबा के बच्चों में भी, किसी में ज्ञान बहुत है, पवित्रता कम है, थोड़ी कम है, कहीं ना कहीं थोड़ा लगाव झुकाव है, किसी का प्रभाव भी है, किसी का टकराव में भी आ जाते हैं कभी कभी, नहीं किसी बात में क्या क्यों कैसे है, मगर थोड़ी पवित्रता कम है, किसी बात पे थोड़ा दिमाग गर्म भी हो जाता है, तो पवित्रता कम है, किसी के अंदर ज्ञान पवित्रता भी है पर शांति थोड़ी कम है, कोई ना कोई पुरानी बात उभर जाती है कभी कभी, किसी किसी के अंदर ज्ञान पवित्रता शांति भी है किंतु प्रेम कम है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख के हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, किसी को प्यार भी है किंतु अतिंद्रिय सुख की अनुभूति कम है, आनंद की अनुभूति, सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं है। और जब सातों एनर्जी का बैलेंस है ना उसके अंदर, इसलिए वो हीलिंग एनर्जी का सागर है। हीलिंग, किसी के मन की तन की बीमारी हो, कुछ भी हो, कोई समस्या की हीलिंग करनी हो, तो बिना सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर बने हीलिंग नहीं कर सकते हो, राइट? एक बाबा, इसलिए बाबा को याद करते हीलिंग करनी हो तो, किसी देहधारी को याद करते हो क्या? करते हैं कि वो आए तो हीलिंग कर दे। जैसे बड़ी दादी थी ना, दादी, मुझे बड़ी दादी का याद आता है। सुबह सुबह जब मैं मुरली में हम आते थे ना, तो दादी मुरली के बाद मैं मिलता दादी को रोज, तो दादी कहती, अच्छा गुप्ता जी कोई ऐसा पेशेंट है देखने, कोई ऐसा पेशेंट बाबा का बच्चा हो या माउंट आबू का हो, टूरिस्ट हो, कोई बीमार हो, जैसे सीरियस हो तो मुझे बताओ। मैं कहता दादी हाँ हाँ ऐसे है ऐसे। पर दादी के अंदर ये थी, ताकत थी, दादी जब आती थी राउंड पे, पेशेंट से मिलने आती थी, तो दादी पूछती थी उसको क्या तकलीफ है, दादी उसको प्यार से देखती और फिर उसके माथे पे हाथ रख देती थी। और सचमुच में जो मरीज़ 20-21 दिन से बेहोश वेंटिलेटर पे होता था, दोपहर आते आते उसको होश आ जाती थी। हीलिंग मतलब जो लग रहा है कि हमें पेशेंट होपलेस है, होपलेस में कुछ होने वाला नहीं, ठीक नहीं होने वाला है, तो हीलिंग कर देना किसी को, बेहोश से वापस होश में ले आना, ऐसे ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सातों एनर्जी का बैलेंस हो। बाबा भी ये करते थे ना, कोई बच्चा बीमार होता था, दादियाँ बताती ना, कोई बाबा क्या करता था, बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया, बाबा इसको बुखार है, कहाँ बुखार, बुखार तो है ही नहीं, और बुखार चला गया, बाबा इसको ये तकलीफ है, बस बाबा ने कहाँ है ही नहीं, खत्म हो गई बीमारी। तो हीलिंग करने के लिए क्या चाहिए, सातों एनर्जी का बैलेंस चाहिए। हम क्यों नहीं हीलिंग कर पाते, क्योंकि सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं होता। भाषण बहुत अच्छा करते हैं, योग में कमी होती है, पवित्रता नहीं आती है, शक्तियाँ कम होती हैं, कोई ना कोई शक्ति कमी होती है, तो इसलिए हीलिंग नहीं हो पाती। बाबा जो है सातों एनर्जी का बैलेंस है, इसलिए हीलिंग एनर्जी का सागर है। और इसलिए क्या है वो ज्वालामुखी योग अग्नि, जब तक हीलिंग नहीं होती ज्वालामुखी योग अग्नि नहीं होती है, राइट? तो बाबा यहाँ बैठा है मेरे दिल में, इसको अंदर से महसूस करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, ये दिव्य ब्राह्मण जन को स्मृति को इमर्ज करना चाहिए, राइट? तो जितना इसको इमर्ज करते हैं तो बाबा की श्रीमत याद आती है। कौन सी है श्रीमत? पवित्र भव योगी भव। जितना पवित्रता आएगी बढ़ेगी, उतना योग लगता जाएगा, जितना योग लगता जाएगा उतनी पवित्रता बढ़ती जाएगी। मुर्गी पहले हुई अंडा पहले हुआ बताओ, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? ऐसे ही इसमें है, पवित्रता है तो योग है, और जितना योग है उतनी पवित्रता, जितनी पवित्रता उतना योग, राइट? तो जितना जितना पवित्रता बढ़ती जाती है उतना योग लगता जाता है, जितनी योग बढ़ता जाता है उतनी पवित्रता बढ़ती, संपूर्ण पवित्रता आ जाए तो हम निरंतर योगी बन जाए, राइट? तो ऐसा, तो इसको बोलते हैं बाबा को दिल में रियलाइज करना, माना सच्ची दिल, जिस दिल में बाबा के सिवा कोई और नहीं है वो सच्ची दिल है, और साफ दिल माना जिसमें श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं हो, वो साफ दिल है। तो ये जो है हमारी, जब बाबा हमारे दिल में आ जाता है और बाबा की श्रीमत मन में आ जाए, जरा भी मनमत परमत नहीं होती, तो क्या होता है, आपने मुरली में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं तो दो गिफ्ट हमको मिलती हैं, कौन कौन सी? हमारी बर्थडे गिफ्ट है, कौन कौन सी है? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। तो जैसे ही बाबा दिल सच्ची साफ होती है तो हमारे अंदर दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, और खुलने से हमें ज्ञान समझ में आने लगता है, आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, तब समझ में आने लगती है। मुरली का एक एक महावाक्य, जैसे आज की मुरली है, एक एक बात समझ में आने लगती है। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले परसों कहा था ना, अगर बाप से क्या करना है, बाप के साथ उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण पवित्र बनो, और क्या बनो, संपूर्ण सरेंडर करो, देखो भी भूल जाओ, अशरीरी बन जाओ, राइट? आज क्या कहा, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो, है ना, तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए, इसकी गहराई समझ में आएगी, कि बाबा के अलावा कोई मेरे दिल में ना हो, बस सच्ची दिल और साफ दिल, बस बाबा ने जो कहा ना, दुनिया वाले क्या बोलते हैं क्या कहते हैं उसमें जरा भी ना हो, बस बाबा की मुरली। और ये मुरली जो है ना, एक बार दादी को कि बहन ने कहा कि दादी ये भाई ना बदलता नहीं है, ये भाई ठीक से काम नहीं करता है, इसको हम कितना कहते हैं। दादी ने कहा ना तुम उसको बदल सकती हो ना दादी उसको बदल सकती है, कौन बदल सकता है? ये मुरली बदल सकती है। बाबा भी नहीं बदल सकता, कौन बदल सकता है? बाबा की मुरली बदल सकती है। तो ये जो है, जब तब मुरली समझ में आने लगती है तो हमें समझ में आने लगता है कि मैं आत्मा कैसे सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से शरीर को चला रहे हूँ, और मन के माध्यम से, विचार भावनाओं और वृत्ति के माध्यम से वो एनर्जी बॉडी में जाती है, और बॉडी शरीर जो है कब रिसीव करता है एनर्जी को? कब एनर्जी को रिसीव करेगा? अगर मेरा भोजन शुद्ध सात्विक होगा तो, बाबा की याद में बनाया सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन होगा तो, थोड़ा भी रासिक भोजन खाया तो एनर्जी कहाँ जाएगी? कितना मर्जी योग कर लो, कितनी मर्जी मुरली पढ़ लो, आप रासिक भोजन खाओ, पराठे पकौड़े समोसे खाओ, क्या होगा? आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बीमारी खत्म नहीं होगी, राइट? तामसिक भोजन खाओ, चाय कॉफ़ी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, खूब मसाले वाली चीज़ें खाओ, चटपटी खाओ, लहसुन प्याज भी कभी कभी खा लो घर जाने, तो क्या होगा? एनर्जी जाएगी बॉडी में? नहीं, आज की तो मुरली वही है ना, लहसुन प्याज बीड़ी सिगरेट ना, तो बॉडी पे असर ही नहीं होगा। ये समझ में आ जाती है, प्रॉपर नींद नहीं करो तो बॉडी में एनर्जी जाएगी? नहीं जाएगी ना। प्रॉपर सैर नहीं करो रोज, बॉडी में एनर्जी जाएगी? दवाई नहीं खाओ, आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है, हिसाब किताब है डॉक्टर के साथ, फार्मेसी वाले के साथ, तो एनर्जी बॉडी में जाएगी? नहीं जाएगी। और बाप की समझ, बाप देने वाला ही बाप है, सातों आत्मा, सातों एनर्जी से आत्मा को चार्ज करने वाला कौन है? बाप है। मुरली सुनाने वाला कौन है? मन, मन की भावनाओं को, संकल्प भावनाओं, वृत्ति और स्मृति को परिवर्तन करने वाला कौन है? मुरली के द्वारा, बाप है। और शिक्षा सावधान के द्वारा समझाता है, बच्चे जब तुम पवित्र बनोगे, सत्संग में रहोगे, भोजन शुद्ध करोगे, आपका सैर रोज करोगे, नींद अच्छी करोगे, बाबा की याद में सोओगे, पोता मेल देके था ना संडे की मुरली, पोता मेल देके तब सोओगे, तब क्या होगा? तब तुम्हारे अंदर क्या आएगी? तब एनर्जी जाएगी, तब तुम स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे और मन दुरुस्त रहेगा, राइट? कहते हैं ना, अब ये भी समझ आ गई। पर तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए, दिव्य दृष्टि पर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला होना था, ज्ञान है। और अब क्या हम करंट खींचे कैसे? ए बी सी डी का ना, ए बी सी डी, सी माना कनेक्शन, करंट कैसे खींचे बाबा से? बाबा ने कहा चार बातें बताई थी, सत्य की समझ की गहराई चाहिए, आत्मा की गहराई, सभी बात की ना, आत्मा कैसे गहराई, जो परमात्मा की भी गहराई चाहिए, परमात्मा क्या कैसे करता है, को कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे, सत्य की समझ की गहराई, माना ए बी सी डी की गहराई, मेरी ये बीमारी क्यों आई, मेरे को ये तकलीफ क्यों है, मेरा बाबा से कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ता है, कर्मों का भी इतना गहरा हिसाब किताब है ना, कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, सबके साथ प्यार से मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, सबके गहराई। तो इसमें क्या चाहिए? धैर्यता चाहिए ना, धैर्यता, गहराई में जाओ तब धैर्यता, तब पेशेंस आती है। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना हो, आप रखो मोबाइल, लगाओ और एक मिनट में चार्ज हो जाएगा क्या? पेशेंस चाहिए ना, आपका 5% ही डिस्चार्ज हो, 5% ही बचाए तो उसको लगातार लगा के रखो, तब तो 45 मिनट तब तो चार्ज होगा। नहीं, आप बात भी करते रहो, यूट्यूब भी देखते रहो और चार्ज में भी लगा, तो चार्ज होगा क्या? नहीं होगा ना, आप करके देखना, नहीं होता चार्ज। 16% पे 16% पे खड़ा रहेगा, 17 पे खड़ा रहेगा देर तक, आगे बढ़ेगा नहीं। तो पेशेंस चाहिए, करंट धीरे धीरे आएगी, फिर गंभीरता भी चाहिए, सीरियस होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कैजुअली बस, करंट खींचनी पड़ेगी ना, करंट खींचनी पड़ती ना, तो गंभीरता। और फिर सहनशीलता चाहिए, जब पेपर रिटर्न जर्नी पर जा रहे तो क्या होगा, पेपर तो आएंगे, तकलीफें आएंगी, सहनशीलता चाहिए। तो बाबा से सर्व संबंध के अनुभव करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? करंट खींचोगे ना, जब बाबा से करंट आएगी ना, तो तब जाके, तो बाद में तो आपको पता लगेगा, तब जब करंट आई ना अंदर से, तो ड्रामा हमारे साथ क्या बीत रहा है, हम क्या बाबा को महसूस क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हम ड्रामा के चक्कर में खोए रहते हैं, फंसे रहते हैं, ड्रामा जंजाल है ना, फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया, मैं ज्ञान में 40 साल से चल रहा हूँ तो भी मेरे को ऐसा नहीं होता, तो भी मेरे को ऐसा, मेरे को लोग पूछते ही नहीं है, नहीं तो संबंध की अनुभूति होगी क्या? नहीं होगी ना। तो फुल स्टॉप कब लगेगा? मेरे अपने किए कर्मों का फल है, अभी तक मेरे साथ जो हुआ जैसा हुआ मेरे अपने किए कर्मों का फल है। पर समझ में नहीं आती बात, आती है? हम समझे इसने किया मेरे साथ, इसने किया, नहीं। जब बाबा से माइंड हो जाते ना सर्व संबंध, जब बाबा से हम सत्य के समझ, सत्य के समझ की गहराई में जाते हैं, ABCD की गहराई में जाते हैं, प्लस पेशेंस रखते हैं, धीरेता रखते हैं और गंभीर होकर सीरियस होकर लग जाते हैं, अंतर्मुखी होकर बेहद की वैराग्य वृत्ति करके, अनासक्त उपराम वृत्ति करके मन बुद्धि ऊपर लगा देते हैं, फिर एकांतवासी, फिर एकाग्र हो जाते हैं। जब वहां से करंट आने लगती ना तो फुल स्टॉप लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, बिना बाप के साथ के अनुभव के फुल स्टॉप लगता नहीं है, लगता है क्या? और तब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से, फुल स्टॉप लगे तो हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट हो, कनेक्ट होगी तो पवित्रता आएगी। पवित्रता माना जैसे ही बाबा से कनेक्ट होते हैं ना, हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है तो हमको तुरंत अपना अनादि स्वरूप याद आने लगता है और आदि देवी देवता स्वरूप याद आने लगता है। अनादि स्वरूप और देवी देवता स्वरूप इमर्ज होता है ना, तो ये पवित्रता की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज कौन सी है? अपना स्वरूप तो इमर्ज कर लिया हमने, सामने वाले का भी, जो आत्मा आपको तंग कर रही है, दुखी कर रही है, घर में या बाहर, उसका भी अनादि स्वरूप आदि देवता स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना। और रिटर्न जर्नी पे क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं रिटर्न फाइलें खुलती है ना, तो ऐसा ऐसा लगाव झुकाव वाली आत्माएं सामने आती हैं। कई बार जिनसे आप साथ रहते हो उनसे लगाव नहीं होता, क्योंकि वो फाइल खुल जाती है तो उससे लगाव हो जाता है, उसी से 30 साल से रह रहे हो किंतु अब लगाव हो गया, 30 साल के बाद लगाव हो गया, उसी तरह उसी के संकल्प चलते जाएंगे, झुकाव हो जाएगा, प्रभाव टकराव में आ जाओ किसी से, तो ये भी अपवित्रता है। फिर लगाव पवित्रता है, फिर उसके बाद क्या बात में क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रामा में ऐसा होता है, क्या क्यों कैसे होने लगती है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर काम विकार छोड़ा तो ये तो चौथे लेवल की पवित्रता हो गई। फिर पाँचवें लेवल की पवित्रता क्या हुई? काम तो छोड़ा, क्रोध कभी कभी आ जाता, किसी को देख के क्रोध आ गया, लोभ मोह अहंकार आ गया, क्योंकि पवित्र बाप है ना, उसके संबंध की अनुभूति करने पवित्रता की गहराई को समझ बहुत आवश्यकता है। पवित्रता की गहराई नहीं ना तो आप संबंध की अनुभूति कर ही नहीं सकते बाबा के साथ। तीन बातें होती हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। हर संबंध की अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग है और तृप्ति लेवल अलग है, राइट? ठीक है, तो बाबा के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पवित्रता को 7 लेवल की पवित्रता चाहिए। कितने लेवल की चाहिए? पहले लेवल की कौन सी है? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके रखो, तब व्यवहार करो उसके, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आना, और फिर दूसरे का भी इमर्ज कर लो, अपना तो इमर्ज कर लिया, उसको इमर्ज करके व्यवहार करो, दूसरे लेवल की पवित्रता। तीसरा, लगाव झुकाव टकराव प्रभाव टकराव से परे, किसी से लगाव नहीं, पूरे दुनिया में मुती ना, किसी भी देदारी से प्रीत मत रखो। आज बाबा ने कहा ना, थोड़ा भी प्रीत है तो उससे कनेक्शन ही नहीं रहेगा, करंट नहीं मिलेगी, तो लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, ये तीसरे लेवल की पवित्रता होगी। फिर चौथा, क्या क्यों कैसे से परे, क्योंकि क्या क्यों कैसे करो तो क्या वैर संकल्प चलेंगे, उससे भी परे। पाँचवा, काम विकार के साथ साथ क्रोध भी करना है पवित्रता है, लोभ मोह अहंकार करना भी अपवित्रता है, राइट? फिर छठा, आलस्य करना भी अपवित्रता है। बाबा मिला है और हम आलस्य आ रहा है, अलबेलापन हो रहा है, किसी के अगुण देख रहे हैं, बदलने की भावना आ रही, शक अनुमान आ रहा है, चिंता भय हो रही है, जल्दबाजी हो रही, ईर्ष्या द्वेष हो रहा है, ये भी अपवित्रता है, जिससे ईर्ष्या द्वेष उसके संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। हमें क्या करना है? लगाव नहीं, हमें क्या करना है? आलस्य नहीं, अलर्ट, एक्यूरेट, और दोष दर्शन नहीं, गुण दर्शन। कोई गलत कर रहा है मेरे साथ, उस पर रहम आना चाहिए। शक अनुमान नहीं, निश्चय और विश्वास। चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह, राइट? अपने को बाबा से कंबाइंड रखे करते ना तो बेफिक्र बादशाह बन जाते। और भय नहीं, निर्भय। जल्दबाजी नहीं, धैर्यता। और ईर्षा द्वेष नहीं, विश्व कल्याणकारी की स्थिति। जब ये स्थिति आती है तो ब्रह्मचारी, पहला कदम है ब्रह्मचारी। हम ब्रह्मचारी बन गए अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि तो आखिरी क्या है, जिसमें इसका भी अंश ना हो। तब 7वां लेवल आता है संपूर्ण पवित्रता, माना लगाव झुकाव, मतलब टोटल मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क तक भी पवित्रता। और निरंतर सत्संग माना बाबा और मुरली के संग रहे। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब बाबा और मुरली सदा साथ रहेगा, दो ही सत्य हैं, बाबा और मुरली सत्य है। जब बाबा और मुरली साथ रहेगी तो सत्संग हुआ, तब भोजन शुद्ध सात्विक, खाली मुक्का नहीं, आंखों का भोजन भी शुद्ध सात्विक, नाक में सांस भी ले रहे हो ना तो शुद्ध सात्विक, बाबा की याद में लेना, कान से सुनते हो ना कुछ वो भी शुद्ध सात्विक, मुख के द्वारा भोजन पानी पीना भी बाबा की याद में। तो जब ऐसा होगा तब दैवी गुणों की धारणा होनी शुरू हो जाएगी, है ना, राइट। तब ये तब दोबारा से ध्यान करो, सत्य की समझ और गहराई आएगी, जितना जितनी पवित्रता बढ़ती है ना सत्य की समझ की गहराई आती है, तब गहराई आती है और तब जाके हमारे अंदर धैर्यता और आती है। तीसरा जन्म के पाप कर्म है ना, पेशेंस आएगी और क्या आएगी, सीरियस हो जाएंगे, गंभीर होकर करेंगे, और तब आएगी क्या, सहनशीलता, कि एक ही तरीका है पाप कर्मों को भस्म करने का, सहन करके समाना पड़ेगा। कुछ भी मेरे साथ गलत ना हुआ है ना हो रहा है, मेरे अपने किए कर्मों का फल है। बाबा से कंबाइंड होकर सहन करके समा लेना है, सामना कर लेना है, सहयोग करना है सबसे, एक ही तरीका पाप कर्म भस्म करने का। तो ये जब स्थिति आ जाएगी पवित्रता क्या होगी, तो शांत हो जाएगा, शांत माना मन के विचारों की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो क्या होगा, तब हम बाबा के साथ का अनुभव करेंगे हमेशा कि बाबा सबकी पालना कर रहा है, सबको पालना करता है, तब हमें सबके प्रति स्नेह पैदा, जैसे बाबा को सबके प्रति स्नेह है हमारा स्नेह हो जाएगा, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होगी। दो गिफ्ट है ना हमारे पास, कौन कौन सी, दिव्य दृष्टि से क्या बना, ज्ञान, पवित्रता, शांति और सच्चा स्नेह समझ में आया क्या है, पहले समझ में नहीं आता था, बाबा सबको स्वीकार करता, सबकी पालना बराबर करता है, तो पहले समझ में नहीं आता शांति क्या है, प्यार क्या है, खुशी क्या है, तब प्यार महसूस हुआ, समझ में आ गया सच्चा प्यार क्या होता है, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह क्या होता है, फिर दिव्य बुद्धि रूपी रिफ्लेक्टिव हुई, तो अब हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुँच गए। इसी बीच में समझ में आया तो इससे क्या हुआ, मेरा दिव्य बुद्धि रूपी रिफ्लेक्टिव हुई, और जो सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारा सूक्ष्म बुद्धि मन और संस्कार, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। सुना, सूक्ष्म शरीर क्या है, बुद्धि यहाँ है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और संस्कार, कौन से संस्कार, ये चार नियम और चार मर्यादाएं, पवित्रता, सत्संग, शुद्ध सात्विक भोजन, दैवी गुणों की धारणा, और पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, और सारा दिन मतलब मुरली का मनन चिंतन, और सोने के बाद सच्चा सच्चा पोता मिल बाबा को देना, बाबा के साथ सो जाना, ये हमारे चार नियम हैं। तो ये जब हमारे अटेंशन में आया तो क्या हुआ, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, ये हमारा संस्कार बन गया, अभी ये हमारी ब्राह्मण कल्चर बन गई है। हम कभी अमृत में सोते हैं क्या, नियम ही नहीं है, मुरली कभी मिस करते हैं क्या, और सारा दिन हम क्या पढ़ते रहे, क्या किसका चिंतन करते, दुनिया का चिंतन नहीं करते, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने क्या वरदान दिया, क्या स्लोगन दिया, मुझे ऐसा बनना है, और सोने के पहले सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देखे सोते हैं, ये हमारी कल्चर है, राइट। तो ये जब आता है ना, तो तब हम बाबा की गोद में पहुँच सकते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, दिव्य बुद्धि लिफ्ट मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, बुद्धि इंजन है, दिव्य बुद्धि इंजन और मन रूपी लाइट का शरीर, और ये मर्यादाएं क्या बन गई, ड्रेस बन गई सूक्ष्म शरीर की। जितनी ज़्यादा पवित्रता बढ़े, जितनी ज़्यादा सत्संग बढ़े, जितना शुद्ध सात्विक भोजन बढ़े और गुणों की धारणा बढ़े, उतना पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन हो, उतना चमकीली ड्रेस बनती जाती है, तब बाबा की गोद का अनुभव करते हैं, राइट। तो सूक्ष्म वतन में जाने के लिए क्या चाहिए, बाप दादा की दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट चाहिए, किंतु कब एक्टिव होगी, जब सबको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, तब हम दिव्य बुद्धि से, तब हम बाबा की गोद में भिन्न भिन्न संबंधों की क्या करेंगे, समझ में आएगी प्रैक्टिकल में, है ना। तो जब बाबा की गोद में पहुंचते तो क्या महसूस करेंगे, सबसे पहले बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ सत्य की समझ का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। आप अपने सूक्ष्म शरीर से विजुलाइज मत करो, महसूस करो कि हम कहाँ हैं, ऑटोमेटिक में आप सचमुच महसूस करते हैं, देखते नहीं हो, देखने की आंखें तो यहाँ हैं कि वहाँ पर हैं, आंखें कहाँ, आंखें लेके गए ऊपर, आँख तो यहीं पे हैं, आत्मा की आँख कौन सी है, बुद्धि और मन, तो वहाँ महसूस करते हो, रियलाइज करते हो कि बाबा मैं सत्य की समझ के सागर में, पवित्रता के सागर में हूँ, शांति के सागर में, ऐसा ऐसा फील होता है, बाबा दिखता नहीं है पर महसूस होता है, राइट। और फिर सच्चे स्नेह के सागर की गोद में, और बाबा के माँ के रूप में क्या हुआ, दिव्य ब्राह्मण जन महसूस होता है, बाप के रूप में क्या पता लगता है, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि से क्या मिला, ज्ञान समझ में आया, पवित्रता समझ में आई, शांति समझ में आई और सच्चा स्नेह क्या होता महसूस हुआ, और फिर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हुई तो क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए, सचमुच सागर में पहुँच गए। शिव बाबा सागर है, ब्रह्मा बाबा मास्टर सागर है, तो हम वहाँ पहुँच गए। तो महसूस बाप के द्वारा क्या महसूस हुआ, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, वर्षे की प्राप्ति हुई ना। बाप के रूप में बाबा क्या है, वर्षा क्या है हमारा, सत्यु का वर्षा तो 21 जन्म की भाषा ही है, किंतु यहाँ पे क्या वर्षा मिलता है, सातों एनर्जी का वर्षा मिलता है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सच्चे स्नेह का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर। अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति होना ही अतीन्द्रिय सुख है, राइट। तो माँ के संबंध से क्या मिला, दिव्य ब्राह्मण जन्म, बाप के संबंध से वर्षा, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, और टीचर के संबंध से क्या, फिर बाबा की गोद में बैठे हुआ, और वहीं चक्र घूमना शुरू हो जाता है। रचता रचना के आदि, आज की मुरली भी थी ना, रचता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, हम पहले परमधाम में कैसे थे, सत्युग में कैसे थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम उसे महसूस करते हैं, समझ रहे हैं, सर्वगुण संपन्न क्या है, 16 कला संपूर्ण स्थिति क्या है, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन सी मर्यादाएं, कौन सी मर्यादाएं, यही चार नियम और चार मर्यादाएं, इसमें परफेक्ट होना है, पवित्रता में परफेक्ट, सत्संग में परफेक्ट, और क्या किसमें परफेक्ट, भोजन में परफेक्ट, आंखों का भोजन, ये नहीं मोबाइल में रील देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, भोजन आंखों का भोजन, कान का भोजन, नाक का भोजन, मुख का भोजन, राइट, और फिर दैवी गुणों की धारणा में परफेक्ट, ये बता हमारी परफेक्शन, मर्यादा पुरुषोत्तम, अमृत वेले में परफेक्ट, मुरली में परफेक्ट, और सारा दिन बाबा की मुरली का ही मनन चिंतन चलता रहे, वही महसूस करते रहे, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, और आप क्या कहेंगे, अभी काम नहीं करना है क्या, क्या नौकरी नहीं करनी है, घर में खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोने, और सचमुच देखो बाबा की याद में कर्म करते हो ना, मेरे माताओं को बहुत अनुभव होता है, मेरे को भी अनुभव होता है, सारे काम ऑटोमेटिक अपने आप होते रहते हैं, वैसे संकल्प चलते ही नहीं, काम अपने आप होते रहते हैं, और अच्छे होते हैं, परफेक्ट होते हैं, पहले गलतियाँ भी होती, अब नहीं होती, बाबा की याद में रहने से। मैं तो मुरली जेब में ही रखता हूँ ना, जैसे मौका लगता कोई बात तुरंत देखा पॉइंट वापस जेब में, उतनी देर में बाबा की याद में ही काम करना, पेशेंट देखना, सब कुछ देखना, सब कुछ करना, तो बाबा की याद में रहेगी, तो ऐसे क्या होता है, तो ये जो है इसके अनुभव में, तो इस तरह से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, माँ का, बाप का, टीचर का, टीचर का क्या हुआ, सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र घूमा, तो क्या हुआ, इससे चक्रवर्ती राजा की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति होती है, तो ये क्या अनुभूति तो की, बाबा के साथ की अनुभूति, पर साथ साथ भविष्य भी दिखाई देता है, मैं क्या बनने वाला हूँ, अनादि स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, और संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, तो उस चक्र से दिखाई देता है कि मेरा क्या स्थिति है, ये मेरा चक्र है, फील होता है क्या क्या पद की प्राप्ति होती है, अभी ब्राह्मण हूँ, क्या बन जाऊँगा, अभी थोड़ी देर में फरिश्ता, और फिर क्या बनेंगे, देवता, कब बनना है, सत्युग में, अभी बनना है, और मास्टर बीज रूप बन के बाबा के साथ वापस घर जाएंगे, और वापस सत्युग में आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ वापस आएंगे, फील होता है, राइट। फिर टीचर, सब टीचर का हुआ, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विशाल बुद्धि है ना, और फिर सतगुरु गुरु में क्या मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, हालांकि 63 जन्मों के पापक्रम चुक्त होने के बाद ही परमधाम में जा सकते हैं, नहीं किंतु बाबा अभी क्या कर देता है हमको, टीचर के सतगुरु के रूप में हमको क्या बना देता है, त्रिकुलोक की नाथ बना देता है, हम बिना पापक्रम में ना भी भस्म में नहीं हुए, किंतु तो भी हम परमधाम में जा सकते हो, बाबा के साथ की अनुभूति, अशरीरी बन के परमधाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो सकते हो ना, नहीं हो सकते, महसूस होता, तो बाबा क्या करता है, हमको मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है, साकारी, अकारी, निराकारी, त्रिलोकीनाथ, और वहाँ से जैसे जैसे पापक्रम भस्म हल्के होते जाते, तो हम बाद में सत्युग में भी जा सकते हैं, सुखधाम में भी अपने अपने महल में जा सकते हैं, राइट। तो धीरे धीरे स्थिति बनने लगती है त्रिलोकीनाथ, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, बाप के माँ के रूप में जन्म, बाप के रूप में त्रिनेत्री और दिव्य बुद्धि की लिफ्ट, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी, और सतगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ, जब तीनों लोगों में जाने की प्रैक्टिस हो जाती है, अब बाबा क्या करता है, बंधु बन जाता है, क्या बन जाता है, बंधु बना बड़ा भाई, अब मेरा काम शुरू हो गया, बाप टीचर सतगुरु से मेरे को वर्षा मिलना शुरू हो गया, मैंने प्राप्ति करनी शुरू कर दी, अनुभव करना शुरू कर दिया, तो प्राप्त तो क्या होता है, बंधु बन के क्या करता है बाबा, कहते बच्चे तुम सारा लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी मेरे को दे दो, सारा बोझ मुझे दे दो। बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई होता क्या, उसका बस्ता लेके जा रहा हो तो क्या कहता है, ये बस्ता मुझे दे तू आराम से चल। तो बाबा जब जब हम तीनों अनुभव की प्राप्ति कर लेते हैं, माँ का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, तो क्या होता है, तब बाबा हमें हमारा लौकिक अलौकिक बोझ ले लेता है। तो बंधु के साथ का अनुभव की प्राप्ति क्या है, लाइट, सारा बोझ बाबा ने ले लिया। सखा के रूप में क्या करता है बाबा, क्या करता है बताओ, जो माता पिता को बात नहीं बता सकते, टीचर को भी बता नहीं सकते, सतगुरु को भी नहीं बता सकते, भाई को भी नहीं बता सकते, वो किसको बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमसे ऐसी गलतियां होती हैं बाबा का बनने के बाद भी, पहली वाली गलतियां भी होती हैं जो किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो चीज़ बार बार दिल को खाती है, आगे नहीं बढ़ पाते। तो बाबा को हम क्या करते हैं, हर बात बताते हैं, पर कब बताते हैं, जब सारा बोझ खाली हो जाता ना, तो ऐसा कुछ अंदर मन में तो रह गया, ये तो बोझ दे दिया बाबा, लौकिक अलौकिक दे दिया, कुछ ये बात और बाबा को, तब बाबा हमारी बात सुनने लगता है, तब अपने मन की सारी बात शेयर कर सकते हैं। सच्चाई से रोज लेटर लिखते हैं, कई बार मैंने तो प्रैक्टिकल में देखा है, अगर हम पुरुषार्थ ना करें तो रात को पोतामल करने को लिखने को दिल करेगा, चार्ट भरने को दिल करेगा, मैंने कुछ किया ही नहीं। जब हम कुछ करते हैं, अटेंशन रखते हैं बाबा की मुरली का, पुरुषार्थ करते, तो रात को क्या करते हैं, लेटर लिखने को दिल करता है, नहीं पुरुषार्थ किया ना, मैं अटेंशन रखी तो मुझे कोई थोड़ा सा फीलिंग आई, तुरंत दिया फीलिंग, हाँ गलत किया मैंने, उसने ऐसा मेरे उसने ऐसा बोला, मैंने भी बोल दिया, चलो बोला नहीं, मन में तो आया ना, तभी तो लेटर लिखोगे, नहीं तो लेटर कहाँ लिखोगे, पुरुषार्थ तो किया ही नहीं है। तब याद का चार्ट भी लिखने को दिल करेगा, कितनी देर याद रही, भुलाई भूला कब मैं, नहीं तो याद रहता है क्या, भूलते ही नहीं, याद ही नहीं रहता। तब हम बाबा को क्या करते हैं, सखा बन के लेटर लिखते हैं, सारी बात उसको बताते हैं, राइट। कितने कितने संबंध हो गए, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, छह संबंध हो गए ना। जब छह संबंध का अनुभव कर लोगे ना, तो लेटर लिखने से क्या होगा, डबल लाइट हो जाते हैं, तब बाबा हमको अपनी सजनी बना लेता है। जिसने माता पिता सतगुरु टीचर के रूप में सुदर्शन चक्रनी घुमाया, सतगुरु क्रम में तीनों का तीनों लोगों की ड्रिल नहीं की, और बंधु क्रम में सारा बोझ बाबा को नहीं दिया, सखा क्रम में मन को खाली नहीं किया, वो बाबा की सजनी नहीं बन सकता है। दिमाग से कह सकता है मैं सजनी हूँ, बाबा मेरा साजन है, किंतु दिल नहीं मानेगा, दिल कब मानेगा, जब ये छह संबंध निभा लेंगे। तो ये बाबा की गोद में हम अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन में अनुभव कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बाबा को क्या, बाबा हमारा साजन बन जाता है, साफ सुथरी सजनी चाहिए ना, साजन सजनी काली का लूटी हो और साजन गोरा हो तो चलेगा, सफाई चाहिए नहीं चाहिए, तो सारी बात बतानी पड़े ना बाबा को, नहीं सारा बोझ पहले हटाना पड़े, फिर सारी बात खाली करनी पड़े, तब बाबा सजनी बनाता है। साजन का क्या काम होता है बताओ, साजन क्या करता है, सजने के लिए गहने लेके आता है, कपड़े लेके आता है सुंदर सुंदर, शिव बाबा क्या करता है हमारे लिए, सजाता है, किससे, दैवी गुणों से सजाता है। 36 दैवी गुण है ना, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, ऐसे सीक्वेंस वाइज आते हैं, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एकनामी, एक मत एक रस, 12 गुण तो ब्राह्मणों के हैं, इसे दिव्य गुण कहते हैं। और इसके बाद आता है सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव, उदारता, धैर्यता, गंभीरता, शीतलता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सम्मान के सुख सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल स्वभाव। उसके बाद आता है मधुरता, फिर चार जो सारे कल्प चलते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार, ये 36 गुण हैं। किसके हैं गुण, किसके हैं, ब्राह्मणों के हैं। वहाँ पे क्या सत्युग में क्या करेंगे हम, सहनशीलता होगी क्या, सहनशीलता होगी वहाँ पे, क्या सहन करोगे सत्युग में, क्या संतुष्ट रहोगे, है ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं करना है ना, दया करनी किसी के ऊपर, रहम करना है, करुणा करनी है, क्षमा भाव करेंगे वहाँ पर, ये यहाँ पे करने हैं। वहाँ तो गायन है सिर्फ, किसका है ये, दैवी गुण यहाँ हैं। तो 36 गुण कब आते हैं, साजन, जब साजन सजाता है, एक एक गुण में हम भरपूर हो जाते हैं, भरपूर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। साजन के साथ सदा रहो ना सजनी, आशिक माशुक वाला संबंध हो जाता है जब, तो सारा टाइम बस ऐसी लगन लग जाती है बाबा के साथ रहने की, सूक्ष्म वतन में फीलिंग होती रहती है। और जब सर्जन, फिर बाबा सर्जन बन जाता है। कौन सा संबंध है, आठवां संबंध सर्जन का है। शादी होने के बाद सर्जन चाहिए होता है, डॉक्टर चाहिए होता है, बचपन में चाहिए होता है क्या, कुमार कुमारी को नहीं चाहिए होता है, उसके बाद चाहिए होता है। और सर्जन क्या, रिटर्न जर्नी पे साथ रहता है, रिटर्न जर्नी ना, 84 जन्म, 83, 82, प्रॉब्लम खुलती जाती हैं, फाइलें खुलती जाती हैं, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, खुलती नहीं खुलती, नई नई फाइलें। बाबा कहता है जो तुमको कभी अज्ञान काल में भी नहीं आया वो भी फाइलें खुल जाती हैं। बूढ़ों को भी क्या होती है, ऐसी ऐसी फाइलें खुल जो कभी आप कभी संकल्प भी नहीं आया होगा, होता नहीं होता, अचानक से फाइलें खुलनी शुरू हो जाती हैं। और बाबा क्या कर, सर्जन के रूप में क्या करता जाता है, ऑपरेशन करता जाता है, वो बीमारी सिर निकलता है, काटता जाता है, विकारों का सिर काटता जाता है। तो सर्जन साथ रहता है, याद रहता है सर्जन मेरे साथ है, तो क्या होता है, सर्वगुण संपन्न साजन बनाता है, 16 कला संपूर्ण सर्जन बनाता है। अर्थात हर गुण में 100% कौन बनाता है, सर्जन बनाता है। यस, संपूर्ण निर्विकारी कौन बनाता है, सर्जन बनाता है। जब जो रिटर्न जर्नी पे हम पेपर पास करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव, सर्व संबंधों के साथ को बार बार, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, उस संबंध से बाबा को याद करते हैं, बाबा को यूज़ करते हैं, उतना उतना क्या होता जाता है, जैसे सत्यता की जैसे मधुरता बढ़ती जाती है, सहनशीलता बढ़ती जाती है। और 16 कला में 100% सहनशीलता 100% हो गई। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं कभी, मेरी स्थिति खराब नहीं होती, दृढ़ता कम नहीं होती, संतुष्टता कम नहीं होती, हर्षित मुक्ता चमकता रहता चेहरा साथ साथ। तो 16 कला संपूर्ण माना 100%, 16 कला माना 16 आना, संपूर्ण निर्विकारी, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दिया, पर आलस से भी नहीं रहा भाई, अलर्ट और एक्यूरेट है, किसी का अवगुण दिखाई नहीं देता है, सबका गुण दर्शन होता है। क्या होता है सबका, कोई गलत करता है तो रहम आता है उस पर, संशय नहीं होता, निश्चय और विश्वास रहता है, फिक्र नहीं होता, क्या होता है अभी, बेफिक्र बादशाह रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, भय नहीं लगता है, निर्भय रहते हैं, जल्दबाजी नहीं, धीरेता रहती है, कोई बात नहीं, हो रहा है, और विश्व कल्याण, ईर्ष्या द्वेष नहीं, विश्व कल्याण का एक भाव रहता है, राइट, समझ रहे हैं। तो ये हमारे क्या बनते जा रहे, संपूर्ण निर्विकारी, विकार तो खत्म हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो खत्म हो गया, उसको तो कहा विकारी, पर आलस्य भी खत्म हो जाए, अलबेलापन भी खत्म हो जाए, चिंता भी खत्म हो जाए, डर भी खत्म हो जाए, और क्या खत्म हो जाए, जल्दबाजी भी खत्म हो जाए, ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाए, इसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तो ये ऐसी स्थिति बनती जाती है। तो ये कौन बनाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनाता है, सर्जन बनाता है, पवित्रता की मर्यादा, सत्संग की मर्यादा, संघ की मर्यादा, भोजन की मर्यादा, दैवी गुणों की मर्यादा, अमृत वेले की मर्यादा, मुरली की मर्यादा, और किसकी मर्यादा, सारा दिन बाबा की मुरली पर टेंशन रखने की मर्यादा, और सोने के बाद सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देने की मर्यादा, कौन बने मर्यादा पुरुषोत्तम, किसने बनाया, सर्जन बनाता है। और अहिंसा परमो धर्म कौन बनाता है, वो भी सर्जन बनाता है, कौन बनाता है, सर्जन बनाता है, क्योंकि रिटर्न जर्नी पे क्या होगा, प्रॉब्लम निकलेंगे। अहिंसा परम धर्म ना, काम विकार तो छोड़ दिया, कामना भी ना रहे, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति, तो लाइट का ताज आ गया। क्रोध तो खेला गया, पर क्रोध के बाल बच्चे भी ना रहें, रोब भी ना डालें, किसी का गुण भी दिखाई ना दें, तो लोभ भी ना रहे, और क्या आ जाए, मोह भी ना रहे, और अहंकार का अंश भी ना रहे, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। तो ये स्थिति कौन बनाता है, सर्जन बनाता है। सर्जन का बड़ा भारी रोल है, इसलिए बाबा कहते हैं सर्जन के रूप में बाबा को क्या, हर बात बताओ, नहीं बताओगे तो क्या होगा, छिपाओगे तो क्या हो जाएगा, बीमारी अंदर अंदर बढ़ती जाएगी, इसलिए हम बात बाबा को शेयर करते हैं, एक छोटी छोटी बात भी। जब बाबा का 4 पेज का लेटर आता है ना, हम भी 2 पेज का लेटर तो रोज लिखते हैं। एक दिन में कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, कितनी बातें फील होती हैं, सारी राय लेते हैं, बाबा क्या करना है, बाबा कैसे करें, बाबा ऐसा हुआ, बाबा ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज बाबा ऐसा हुआ। दोस्त को क्या बताते हैं, माता पिता से कितनी देर बात करते हैं बच्चे, कितने मिनट? नहीं, माता पिता से कितनी देर बात करोगे, कुछ बात, 2 मिनट 5 मिनट बात करोगे? दोस्त से कितनी बातें करते हो, हाँ? साजन से कितनी बातें करते हैं, घंटों घंटों बात करते रहेंगे, नहीं करेंगे? तो वो बातें संबंध से हम एक बात लिखते हैं बाबा को, सखा के रूप में और साजन के रूप में, सारी सारी बातें करते हैं, बाबा ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। नहीं तो बाबा फिर क्या करता है, बीमारी की जड़ निकालता है। तो ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनाने वाला है? सज्जन। जब संपूर्ण बन जाते हो ना, तब बाबा आपका बच्चा बनता है। ऐसे वैसे का बाबा बच्चा बनेगा क्या, मुझे बताओ? जहां जीत वहां जन्म कहते हैं ना, ऐसे बच्चे का बाबा, ऐसा जब ऐसी स्थिति हमारी होती ना, तो बाबा हमें क्या महसूस कराता है, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। ये तो बच्चा को, बच्चे को महसूस करना बहुत मुश्किल काम है। माताएं कहती है मेरा बच्चा है बाबा, पर रियल में महसूस करते हो क्या? उसकी उसके खाना निकाल दिया अलग बात है, भोग लगा दिया अलग बात है, किंतु रियल में चलते फिरते बच्चा, सुख देने वाला बच्चा हो, कब बनोगे? जब संपूर्ण स्थिति बनेगी ना, तब बच्चे का अनुभव होगा। जब ऐसे बार बार बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में महसूस करोगे ना, सर्व संबंधों के अनुभव की सार जब आ जाएगी ना, महीन सार अंदर आ जाएगी ना, तब आनंद का अनुभव होता है। तब क्या अनुभव होता है? सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, बस मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। लवलीन स्थिति होती है तब, लवलीन जब होती है तो अशरीरी बनते हैं। सूक्ष्म वतन 3 से 1 की स्थिति है, संसार में ड्रामा है, ड्रामा को फुसल लगाए कहाँ पहुँचे, सूक्ष्म वतन में पहुँच गए, अतिंद्र सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा की गोद में चले गए 2, माना बाबा और मैं आनंद की, और 2 से 1 की स्थिति क्या है, ये आनंद की स्थिति है, एक बस एक ही बाबा, कुछ और नहीं, हम लवलीन हो गए, नदी सागर में समा के क्या बन गई, सागर बन गई, अब अशरीरी बन गए 0.9, बस एक बाबा, बस उसमें समा गए ना, इसको कहते अशरीरी। अशरीरी बन के मैं परमधाम घर में, संकल्प चलने बंद हो गए, और परमात्मा कौन है, शिव बाबा 0 है ना, उसको मेरे को इतना आ रहा है 0.9, शिव बाबा कितना, कितने संकल्प चलते हैं, 0। तो अशरीरी बन के परमधाम, अशरीरी बाप से कंबाइंड होते तो क्या होता है, तो देवान, तो क्या होता है हमारे अंदर, हमारे अंदर अशरीरी स्थिति बनती, क्या बनती जाती है, हमारी स्थिति कैसी बनती जाएगी बोलो, एकदम देह से डिटैच, एकदम डिटैच, संकल्प चलने बंद हो गए और उसमें हमारे देह के अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, देह एकदम रिलैक्स हो जाती है, और ऐसे हार्मोन निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, 5 हार्मोन निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, नेचुरल मॉर्फिन, एनकेफेलिन, सीरोटोनिन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन, और एक होता है डोपामिन। पूरे शरीर में जो करंट है ना, करंट जो होती है ना, हमारी करंट कमज़ोर रहती है, पूरे शरीर में करंट नहीं जाती है, तो करंट ऐसी, ऐसा चक्र बन जाता है अंदर, तो क्या होता है, वो हमारे अंदर से एक तरह का अशरीरी स्थिति, कैसी स्थिति है, जो देह के कर्म भोग है ना, और देह और कर्मों के हिसाब किताब हैं, उनसे हम बेहोश हो जाते हैं, सहन करने की शक्ति आ जाती है, पेन फील ही नहीं होती, कर्म भोग क्या, सूली से कांटा बनने लगते हैं, शरीर को कुछ भी जी होता रहे आपको फील ही नहीं होता, कर्मों के हिसाब किताब कुछ भी होते हैं आपको फील ही नहीं होता है, राइट? तो कर्मों के हिसाब किताब भी फील नहीं होते, सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति आ जाती है, कर्मों के कर्म भोग, कर्म के भोग, देह के कर्म भोग और कर्मों के हिसाब किताब को सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तो ये स्थिति अशरीरी स्थिति से कैसे, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, बेहोश करने से पहले क्या लगाते हैं, गैस सुंघा देते हैं, तो फिर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म सुंघा दी, या दवाई, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, सुंघाते हैं, जो क्या होता है, आदमी बेहोश हो गया, उसके बाद काट लो, छाती काट लो, जो भी पेट काटना हो काट लो, पता लगेगा उसको कुछ, अब कुछ मर्जी कर लो उसका, अब या भी ये जो ऑपरेशन, इसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन क्या होता है, इस अशरीरी स्थिति में रहने से क्या होता है, मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है, मैंपन मेरेपन का त्याग हो जाता है, मैंपन मेरेपन का त्याग होने से क्या होता है, इसी को तपस्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तपस्या कहते हैं, तपस्या माना जिसमें मैंपन मेरेपन का त्याग हो गया, मैंपन मेरेपन से त्याग वाला जीवन, इसे तपस्या जीवन है, राइट? समझ रहे हैं? तो कब आएगी, जब सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे ना प्रैक्टिकल में, बाबा के साथ तब हम क्या हो जाएंगे? अशरीर हमारा बेहोश हो जाएंगे, माना हम देह अभिमान से बेहोश हो जाएंगे, है ना, अशरीर स्थिति से बेहोश होंगे और फिर निराकारी स्थिति आएगी। क्या फ़र्क है अशरीर निराकारी में? क्या फ़र्क है? अशरीर में हम देह से अटैच हुए हैं कि तू है तो देह से है तो, किंतु जैसे ही हम 0.01 पे पहुंच गए, संकल्प कितने हो गए 0.9 नहीं 0.01 पे पहुंच गए, तो क्या हो गया? अब निराकारी स्थिति आ गई, अब हम देह का फीलिंग ही नहीं, देह और देह की दुनिया से एकदम परे हैं, निराकारी बन के निराकारी बाप से कंबाइंड हो गए। ये है तपस्या। इसमें हमारे जड़ क्या है, कर्मों की जड़ क्या है, कर्मों के हिसाब किताब की जड़ क्या है? पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भस्म होने शुरू होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वो भस्म होने, भस्म होना मना कर, इन पांचों विकार का वेग होता है, वेग समझते हैं, वेलोसिटी, इंपल्स आती है। काम विकार आएगा तो कैसे आता है? जोर से आता है। क्रोध कैसे आता है? जोर से आता है। कंट्रोल होता है क्या? लोभ कंट्रोल में आता है क्या? मोह कंट्रोल में आता है क्या? पागल हो जाते हैं मोह, अहंकार भी जोर से आता है। तो ये क्या आता है? जब अशरीर बन के अशरीर बाप से कमांड होता है तो क्या होता है? उसका वेग को सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो ये तब क्या होते हैं? वेग सहते सहते क्या होता है? वो भस्म होने लगते हैं, सातों एनर्जी का बैलेंस आने लगता है, हील होने लगते हैं और ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत होने लगते हैं। तो बिना बाबा को यूज़ किए हुए, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, वैसे संबंध से बाबा को जब यूज़ करना सीख जाते हैं तो फिर अशरी स्थिति बनने लगती है। पहले तो आनंद की स्थिति आएगी सर्व संबंधों के, फिर बाबा, बस बाबा ही बाबा दिखाई देता है, प्रैक्टिकल में फील होता है, तब अशरी बनते हैं, अशरी से निराकारी बनते हैं। निराकारी माना तपस्या शुरू, तपस्या माना तपस्वी जीवन है जिसमें मैंपन मेरापन है ही नहीं, किसी चीज़ का भी मैंपन मेरापन है नहीं, तो ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, योग का भी अभिमान हो जाता है, कर्म गुणों का भी अभिमान हो जाता है नहीं, जिसमें मैंपन मेरापन है ही नहीं। मैंपन मेरेपन के त्याग को ही तपस्या कहते हैं। जब निर्विकारी बनने लगते तब निर्विकारी बनने लगते हैं, निर्विकारी बनने लगते हैं तो क्या होता है? अब जो भी हम कर्म करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, उसमें सेवा शुरू हो जाती है। निर्विकारी आत्मा ही सेवा कर सकती है। विकारी भाषण कर ले, किसको सेवा होगी क्या? विकारी सेवा कर सकता है, किसी को बदल सकता है क्या? जितना जितना निर्विकारी बनते जाते हैं, हमारे से सेवा शुरू हो, बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू हो जाती और वो अंदर रिकॉर्ड होती जाती, नई स्मृतियाँ बनती जाती, चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय होने लगता। तब मुरली क्या होती है? तब मुरली चेतन मन में मुरली साधन बजती रहती है। तो मुरली बजी तो क्या हुआ? राधा और क्या बन गए? शिव बाबा की मुरली साधन बजेगी, मन में बजेगी, बजेगी ना, तो क्या होगा? वो हमें भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कराती है। प्रैक्टिकल में जीवन, भाव संकल्प चले, भावना बनी, भावना से वाइब्रेशन, मेरे बाबा के पास, बाबा के मेरे पास, यही याद है, सच्ची याद है। मन के लेवल पर परिवर्तन हुआ ना, और जब भावना बनी, उसी भावना में रहते तो वृत्ति सर्कल पूरा हो गया, वायुमंडल, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, आ रही ना, तो वही वायुमंडल बन जाता है। किसका? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद का, एक एक संबंध के अनुभूत के अनुभव के प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे बाबा के पास जाके सारे अनुभव होते हैं ना, सूक्ष्म में जाके बाबा के साथ साथ सारे अनुभव, तो प्रैक्टिकल आपके यहाँ रहते अनुभव होने लगते हैं। साथ में आपके पास जो भी आएगा उसको भी, जैसे यहाँ आएंगे तो क्या ठंडी हवा लगेगी ना, पंखे नीचे ठंडी हवा लगती है, सेम चीज़ जो आपको अनुभव हो रहा उनको भी होने लगता है, राइट, समझ रहे हैं? तो ये हमारे प्रैक्टिकल में रिकॉर्डिंग होने लगती है। फिर जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, प्रैक्टिकल मन के लेवल पर परिवर्तन होता है, बुद्धि के लेवल पर समझ आती है, मन के लेवल पर परिवर्तन होने लगता है। फिर वैसे कर्म, जैसे बाबा के साथ हम चल रहे हैं, बाबा का हाथ में हाथ कहते हैं ना, साथ और हाथ, कौन सा साथ? दिल में बाबा और श्रीमत रूपी हाथ। हम गार्डन में टहल रहे हैं, बगीचे में टहल रहे हैं, बीच पर बाबा के साथ सैर कर रहे हैं, हर संबंध से बाबा साथ आता है। जैसे बाबा दूर नहीं है, दूर पास में, हम बाबा मेरे साथ है, हर समय की अनुभूति होती है, राइट। सचमुच मैंने तो बहुत अनुभव किया, ये हार्ट का प्रोग्राम चलता है ना, जब ये होता है ना, डायबिटीज़ का प्रोग्राम होता है, तो बाबा कैसे एक एक बच्चे को कैसे अनुभव कराता है प्रैक्टिकल में, वो सचमुच में होता है, और उनको भी अनुभव होने लगता है। अनुभव मैं कर रहा होता हूँ पर उनको भी अनुभव होने लगता है। तो ये ऐसी स्थिति हमारा मन के द्वारा, मन से, क्योंकि मनमाना भाव है विक्रम विनाश करने के लिए, मनमाना भाव है मंत्र, बुद्धि है यंत्र, कौन सी बुद्धि? क्लीन और क्लियर बुद्धि, समझ आई तो क्लीन और क्लियर बुद्धि हो गई, मन दिल क्या है? स्विच, मेन स्विच। दिल सच्ची साफ है तो बुद्धि की लाइन आठों शक्तियाँ आ गई, क्लीन और क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी बात। और मन जो है अभी क्या करता है? उसका चिंतन, बाबा की मुरली का चिंतन, बाबा के संबंधों का चिंतन सारा दिन। उससे वृत्ति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल में के जो कर्म करते हैं ना प्रैक्टिकल में, बिना कार्य में लगाए रिकॉर्डिंग नहीं होती है। वरदान भी हमने जब कार्य में लगाएंगे तो रिकॉर्ड होगा, तब हमारा फलीभूत होगा वरदान, तब फल और फूल है ना, दैवी गुणों के रूप में फूल प्रैक्टिकल में हमें भी महसूस होते हैं, सामने वाले को महसूस होते हैं, राइट। तब बाबा की प्रत्यक्षता होती है, चेहरे और चलन के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता। चेहरा माना मन और चलन माना कर्म, देखना सुनना बोलना। ब्रह्मा बाबा कैसे था? बाबा का देखना, बाबा का पढ़ना, बाबा का सुनना, खाना खाना, काम करना, चलना, हर चीज़ में क्या था? सेवा समाई थी, राइट। इस तरह से हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों करते 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 बाबा के साथ रहते रहते जितना रहते हैं बाबा को उतना अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हैं। प्रैक्टिकल में अनुभव की अथॉरिटी में ना अब एक्सपीरियंस हो जाता है कि बाबा मेरे साथ है। बाबा को हम कभी माँ के रूप में यूज़ करते, कभी बाप के रूप में यूज़ करते, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी सखा के रूप में, जो जैसा चाहिए। कोई बात भारी आ रही है, भारी तुरंत बाबा को बता देते, बाबा कितने दूर है, बस यही तो है बाबा मेरे यहीं बैठा हुआ, बाबा को बाबा ऐसा हो गया, कुछ बंद बोझ लग रहा है बाबा को दे दिया, ऊपर जाना है यहाँ भारी लग रहा है ऊपर चले गए, सतगुरु के रूप में, सखा के रूप में हमने शेयर कर लिया, और टीचर के रूप में सुदर्शन को घुमा लिया, दिव्य दृष्टि ऑन की ऊपर चले गए। ऐसे मतलब बार 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 सर्जन के साजन के रूप में दैवी गुण कमी पड़ रही है सजा दिया, सर्जन कोई गलत चीज़ आ रही है ऑपरेशन कर दिया। बाबा को फिर गोद में, बाबा को गोद में लेके, बाबा गोद में मतलब बच्चा बन गया ना, सुख तब सुख मिलता है बाबा के साथ, हमेशा बाबा के साथ, बाबा की बाबा मेरे गोद में है, जैसे बाबा मेरे साथ है। तो ऐसे सारा दिन अनुभव होते हैं, ऐसे फिर अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती रहती है, अशरीर निराकारी बनते रहते हैं और सेवा सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं और हम बाबा के साथ मास्टर बीज बन के सारे सारे सत्य सारे कलवृषि सेवा करते रहते हैं, राइट। सबको सकाश पहुंचता है, ओके। ओम, समझ में आया कि ऊपर से गया? पहले दिल, फिर बुद्धि में समझ, और फिर मन के द्वारा प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी मन के द्वारा बनते हैं, और जब उस मन में जो विचार आ रहे हैं उसको जब बाकायदा प्रैक्टिकल में कार्य में लगाते हैं तो फिर अनुभव होता है। बिना कार्य में लगाए अनुभव नहीं होता, और बार बार करने से अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो क्या होता है फिर? अथॉरिटी माना अथॉरिटी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस संबंध से चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे बाबा को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बच्चे निरंतर योगी, निरंतर तपस्वी बन जाते हैं। ओम शांति। चलिए अभी 10 मिनट बाबा को याद करते हैं, अलर्ट होके एक्टिव हो, सीधे होके बैठ जाओ। अभी हम दिल में पहले बाबा को इमर्ज करेंगे, दिव्य ब्राह्मण जन को इमर्ज करेंगे, फिर बाबा के साथ सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर महसूस करेंगे, फिर दिव्य दृष्टि ज्ञान का तीसरा नेत्र एक्टिव हो गया, ज्ञान, पवित्रता, शांति और सच्चा स्नेह, फिर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाएगी, बाबा की गोद में जाएंगे, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करेंगे, फिर आनंद की अनुभूति करेंगे, और फिर अश्री बन जाएंगे, परमधामगर में अश्री बाप से कंबाइंड हो जाएंगे, फिर क्या होगा? सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, कर्म भोग, कर्म हिसाब किताब, तो उससे क्या होगा? चित्त शांति का आनंद में होगा, तब चिंतन चलना शुरू हो, तब आज की मुरली का चिंतन चलेगा ना, देखो कैसे मन में चिंतन चलेगा ना, चिंतन से शुभ भावना शुभकामना बनेगी, वाइब्रेशन बाबा तक जाएंगे, बाबा से हमारे पास आएंगे, पदम गुणा होंगे, पंखा चालू हो जाएगा, माना वृत्ति बन जाएगी, और फिर रियल में हम महसूस करेंगे बाबा से भिन्न भिन्न संबंध मन के लेवल पे, उस वायुमंडल में वो बन गया बगीचा, वो बन गया बीच, सागर का किनारा, फिर दोबारा माँ के साथ, माँ का संबंध, बाप का संबंध, अतिंद्रिय सुख आनंद का अनुभव करो, फिर अश्री का, फिर निराकारी का, फिर विक्रम विनाश, और प्रैक्टिकल में निर्विकारी जब बनते हैं तो फिर बाबा के साथ और गहरा अनुभव। क्योंकि आत्मा निर्विकारी है बन जाती है, तो बाबा निर्विकारी तो सदा ही है, सदा और प्योर है, तो बाबा के साथ और गहराई से और तीसरे लेवल का अनुभव, अथॉरिटी वाला अनुभव मेरे साथ। चलिए करिए प्रैक्टिकल शुरू। अपने दिव्य ब्राह्मण जन्म को आप इमर्ज करें, अपनी चेतना में दिल में बाबा को महसूस करें अर्थात रियलाइज करें। सत्य की समझ का सागर, पवित्रता का सागर अर्थ सहित महसूस करो, शांति का सागर। सच्चे स्नेह का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर। सर्वशक्तियों का सागर, सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर, हीलिंग एनर्जी का सागर, ज्वालामुखी योग अग्नि का सागर, इसी को सच्ची दिल कहते हैं। और सच्ची दिल में स्वयं ही बाप की श्रीमत पवित्र भव योगी भव, इसको साफ दिल कहते हैं। जब दिल सच्ची साफ है तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र एक्टिव हो जाता है। अब इससे ज्ञान अर्थात मुरली या ABCD को की गहराई में जाओ, आत्मा की गहराई में जाओ, आत्मा कैसे शरीर को चला रही है, परमात्मा कैसे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करता है, मेरे मन को पॉजिटिव बनाता है मुरली से, वो कैसे शरीर के लिए क्या शिक्षा सावधानी देता है, बाबा से करंट कैसे खींचनी है, जब हम करंट खींचने लगते हैं बाबा से तो ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है मेरे तन में मन में धन में संबंध संपर्क में दुनिया में उसको हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं, और तभी हम आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो पाते हैं, करंट आने लगती है, जिससे अपने अनादि स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज होने लगती है, और यहीं से पवित्रता की शुरुआत होती है। यही पवित्रता की पहली स्टेज है, अपने अनादि स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके सबसे व्यवहार करना, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सोपन में आना, पवित्रता के सातों लेवल की गहराई, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी की स्थिति महसूस रियलाइज होने लगती है। जितना जितना पवित्रता की गहराई है ब्रह्मचारी बनने लगते हैं, पास्ट को फुल स्टॉप लगने लगता है और अपने सत्य में विचार पास्ट के विचार आने बंद हो जाते हैं, इसको शांति कहते हैं। वर्तमान के ही विचार आते हैं, सत्य ही विचार आते हैं, सिर्फ बाबा से कंबाइंड होकर हर कर्म कर रहे हैं, यही शांति की समझ में आ गई शांति क्या है। जब बाबा से कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, देखते बाबा कैसे सबकी पालना कर रहे हैं, विश्व में हर आत्मा की पालना कर, कैसा भी हो, तब मुझे समझ में आता है बाबा कैसे प्यार का सागर है, सच्चा स्नेह का सागर है। तब ऐसा सच्चा स्नेह मेरे दिल में भी समझ में आता है और सबके प्रति स्नेह पैदा हो जाता है। जब ऐसा स्नेह मुझे समझ में आता है तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है और साथ साथ मेरा सूक्ष्म शरीर रूपी मन स्वच्छ हो जाता है। तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाते हैं। बाबा के साथ बाप का संबंध अर्थात वर्षा, सत्य की समझ का सागर उसमें समा जाओ, पवित्रता के सागर में समा जाओ। विजुलाइज नहीं करो, उसे महसूस करो। अर्थ सहित पवित्रता का सागर क्या है, शांति का सागर क्या है, सच्चे स्नेह का सागर क्या है, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव होता है, तब टीचर के रूप का अर्थात सुदर्शन चक्र बाबा की गोद में है हम और सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, परम धाम का स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, सतगुरु के रूप में त्रिलोकी नाथ, साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल, तब बंधु का अनुभव सारे लौकिक अलौकिक बोझ बाबा को दे देते हैं। उसके बाद सखा का अनुभव बाबा को सारी समाचार, जो भी दिल में बातें लगती हैं हर बात शेयर करना, तब बाबा हमारा साजन बन जाता है, दैवी गुणों से भरपूर करता है। सज्जन के रूप में बाबा हमारा क्या बन जाता है, हमें स्वलकला संपूर्ण बना देता है।